نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے اس محبت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھا کر اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے تھے اسے آگاہ کر کے اپنے مالک کے قریب ہونے کا موقع دیا. ایک لمحے کے لیے سوچئے, اگر نماز ہوتی ہی نہ, ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ نماز کیا اور کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے, تو ہم کتنے غافل ہوتے, کس طریقے سے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ اپنی اصلاح خود کر لیتا ہے نا, تو پھر دوسروں کو اس کی زیادہ اصلاح کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں ایسا کہتے, لوگ ہم پہ تنقید کرتے. شکر کیجئے آپ کے محسن ہیں وہ جو آپ کو آپ کی کمی بیشیاں دکھاتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں بہت لمبا سفر طے کریں اگر ہم اپنی ساری کمی بیشیاں خود دور کرنے والے بنیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے شروع کرتے ہیں. ہم الحمدللہ نماز پوری کر چکے تھے اس ٹیکس کے اعتبار سے, یعنی تکبیر تحریمہ سے سلام تک ہو چکا, اور پھر اس کے بعد ہم نے نماز کے اذکار شروع کیے ہوئے جو بہت ہی خوبصورت اذکار ہیں. انشاءاللہ آج مزید چیزیں بھی سیکھیں گے اور پھر اس کو مل کر دہرائیں گے بھی. آپ کی بک میں جو بھی پیج ہے نمبر اس کو دیکھ لیجئے. لیکن آج ہم پڑھیں گے نماز کے بعد کے کچھ اور اذکار ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تکمیل کس بات سے ہوتی تھی. صحابی کیا کہتے ہیں کہ آپ کے نماز کے پورا ہونے کا کیا پتہ چلتا تھا, پہچان کیا تھی, کہ آپ اونچی بات سے اللہ اکبر کہتے تھے. یہ بخاری کی روایت 841 ہم نے دیکھی, ابن عباس کا یہ قول ہے. تو جب نماز سے فارغ ہو جائے تو امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا چاہیے, یعنی یہ ایک سنت طریقہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین بار کا استغفر اللہ کہنا, اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور اسی طرح ہم نے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذل جلالی والاکرام یہ بھی دیکھا. آپ جب یہ عادت ڈال لیں گے نا تو آپ کو یاد رہے گا, اور وہ تو ہم سب شروع سے پڑھتے آئے نا, سبحان اللہ, پھر الحمدللہ, پھر اللہ اکبر. تو اس طریقے سے یہ کلمات کا جو پڑھنا ہے یہ ہماری نماز کو اس طرح سے پیارے طریقے سے پورا کراتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ کھانا کھا کر ایک دم نہیں لوگ اٹھتے نا, اچھا میٹھے میں کیا ہے, اچھا اب چائے کے قہوہ, اچھا کوئی سونف سپاری, ہاں ہے نا, ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں کی یہ چیزیں. تو بالکل اسی طرح ایک دم دھاڑ سے نماز شروع کرنا اور ایک دم اٹھ کے چلے جانا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ آئے جلدی سے کھائے اور اٹھ کے چلے گئے. تو جسمانی کھانے کے لیے تو ہم اتنے منتظر ہوں اور اتنی کوشش کریں, لیکن روحانی کھانے کے لیے نہ ہو تو یہ تھوڑی سی زیادتی کی بات ہے. آج ہم پڑھیں گے عقبہ بن عامر کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھوں. معوذات کیا ہیں؟ پناہ دینے والی دو صورتیں, مراد وہ صورتیں جو کہ فلک اور ناس ہیں, اور بعض جگہ اس میں قل ھو اللہ بھی آتی ہے. یہ روایت 1523 ہے ابو داؤد کی, اور حاکم نے المستدرک میں 253 پہ جلد 1 میں کہا. اسی طرح ابن خزیمہ میں 755 اور ابن حبان 2347 یہ روایت موجود ہے. یعنی نماز کے پڑھنے کے بعد پوری کرتے ہی معوذات پڑھیں گے, یعنی اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں, صورت اخلاص, صورت فلق اور صورت ناس. یہ تین صورتوں کو ملا کر عمومی طور پہ معوذات کہا جاتا ہے. معوذہ تین کہیں گے نا تو پھر دو ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو فرق پتہ ہے تثنیہ اور جمع کا. تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے نام سے شروع جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے, بے نیاز ہے, اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا, اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اس جیسا ہے ہی نہیں. इस सिर्फ सुर इखलास को अगर समझ जाए ना, तुम्हारे अंदर इखलास आ जाएगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे अंदर इखलास भर दे, क्योंकि कल अल्लाह के हाँ इंसान के किसी भी अमल की कबूलियत की शर्त इखलास है। दुनिया में सुकून और खुशी, और शैतान जिस पे गालिब नहीं आ सकता वो मुखलस है। तो अल्लाह हमें शैतान के फंदों से बचा दे और उसके लिए इखलास की जैकेट पहनने वाले बन जाएं। ठीक है, फिर सूरत फलक है। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत रहम वाला नहायत मेहरबान है। कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, हर उस चीज़ के शर से जो इसने पैदा की है, और अंधेरी रात के शर से जबकि वो छा जाए, और गिरहों में फूंकने वालियों के शर से यानी जादू टूना करने कराने वालों के शर से, और हासिद के शर से जब वो हसद करे। ये रिवायत जो हमने अभी पढ़ी है, दो तीन रिवायतें हैं, फतुल बारी की 78 और सूरत इखलास जो है ये कुरान पाक की 112 नंबर की सूरत है, और सूरत फलक 113 नंबर की है। इसी तरह सूरत नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत रहम करने वाला नहायत मेहरबान है। कहो मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के असल माबूद की, और इस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है, वो जो लोगों के सीनों में वसवसे यानी बुरे ख्यालात डालता है, और जिन्नों में से और इंसानों में से। एक एक लफ्ज़ पे गौर करें ना तो वाकई ऐसे महसूस होगा आपको कि शैतान से पनाह का यही खूबसूरत तरीका है। और ये जो रिवायत मैंने आपसे शेयर की ये सूरत नास कुरान पाक की 114 नंबर की है, और आगे हम रिवायत देख रहे हैं जो सुनन अल कुबरा निसाई में 30 नंबर जिल्द नंबर 6 है, और हदीस का नंबर है 9928, और इब्ने हब्बान में और इमाम मुंजरी ने अल तरगीब में 253 नंबर जिल्द नंबर 2 में कही। क्या है वो रिवायत, आइए देखिए। अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो इसे बहिश्त में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज नहीं रोकती। जरा सा रुकिए, बहुत सारे बच्चे भी खासतौर पर इस हदीस से मुतासिर होकर कहते हैं मामा मैं जो मर्जी करूं। क्यों? इसलिए कि मैं नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता हूं। एक लंबा अरसा तो मैंने भी यही सोचा था, जो मर्जी करो आयतुल कुर्सी तो पढ़ी हुई है, बात तो सच है, लेकिन दो तीन चीजें हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ी है, समझी भी है, अल्लाह ताला के 25 नाम और उसकी सिफात पे गौर भी किया है, आपका अकीदा भी उसके मुताबिक है। इसको सोचेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा अल्लाह ताला की इतनी तारीफें करे और फिर नाफरमानियाँ करे, फिर वो गलत काम नहीं करेगा, वो हराम के पास नहीं जाएगा, कबीरा तो दूर की बात है सगीरा से भी खौफ खाएगा। ठीक है, मुराद क्या है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला मौत के बाद सीधा जन्नत में चला जाएगा, और हम सब जानते हैं आयतुल कुर्सी क्या है। अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم। ترجمہ سننا چاہتے ہیں ایک بار پھر، شاید آپ کو زبانی بھی یاد ہوگا، لیکن ذرا اس وقت نماز کے انگل سے سوچئے۔ पूरी नमाज आपने अदा की, कितनी मुश्किल लगती हैं बाज़ दफ़ा नमाज़ें, मुश्किल हो जाती हैं जब दुनिया के बहुत सारे काम बीच में होते हैं फिर भी नमाज पढ़नी है, तो उस वक्त सोचिएगा किसके लिए, किसने बुलाया, किसके दर पे झुकने लगी हूँ। कौन? अल्लाह के। कौन सा अल्लाह? वो अल्लाह जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो जिंदा है हमेशा कायम रहने वाला है, वो ऊँघता है ना सोता है, इसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, इसकी इजाज़त के बगैर कौन इसके हजूर किसी की सिफारिश कर सकता है, वो जानता है जो कुछ इनसे पहले गुजरा और जो कुछ इनके बाद होगा, और लोग इसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते, मालूम नहीं कर सकते मुराद ये है, मगर जितना वो चाहता है इतना इल्म जिसे चाहे दे देता। इसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को घेर रखा है और इन दोनों की हिफाजत इसे थकाती नहीं। वो बुलंदो बाला बड़ी अजमतों वाला है। प्यार से नाम लिया करे अपने मालिक का। 255 सूरत अल बकरा। क्या पता चला कि अल्लाह का नाम कौन? वो अल्लाह जो सारी कायनात की हिफाजत कर सकता है। क्या वो एक इंसान जो इसकी कार और घर वगैरह की हिफाजत नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता। फिर बंदा अपनी हिफाजत के लिए जायज़ असबाब की बजाय शिरकिया तरीके क्यों इख्तियार करता है? इस मकसद के लिए मुख्तलिफ कड़े और अंगूठियाँ क्यों पहनता है? धागे क्यों बांधता है? अपनी गाड़ी पर जूते या चीथड़े क्यों लटकाता है? ये होता है ना अक्सर शिरकिया मजाहिब में, और इवन मुसलमान भी कभी कभी ना समझी में इल्म की कमी की वजह से ऐसा करते हैं। तो याद रखिए कि अल्लाह के बंदो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, हिफाजत में रहो। यकीनन अल्लाह की हिफाजत ही बेहतरीन हिफाजत है जिसका कोई तोड़ नहीं। और ये जो रिवायत है ये सही बुखारी की 2311 थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो अल्लाह की तरफ से इसके लिए मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाता है और तुलुए फजर तक शैतान इसके करीब नहीं पटकता। अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाने वाला बना दे। फिर इसके बाद एक और दुआ जो बहुत खूबसूरत दुआ है, वो क्या है ये भी पढ़ना साबित है। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी जअलतहु ली इस्मतन वअस्लिह ली दुनयाय अल्लती जअलत फीहा मआशी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाक मिन सखतिक वअऊज़ु बिअफ्विका मिन निक्मतिक वअऊज़ु बिका मिन कला मानी लिमा आतैत आतैत वला मोती लिमा मनात वला यन्फौज़ल जद्द मिन कल जद। ए अल्लाह मेरे लिए मेरा वो दीन संवार दे जिससे तूने मेरी हिफाजत का सबब बनाया, और मेरी दुनिया भी संवार दे जिसमें तूने मेरी रोजी पैदा की है। ए अल्लाह मैं तेरी खुशनुदी के साथ तेरे गजब से और तेरी माफी के साथ तेरे अजाब से पनाह का तालिब हूँ और तेरे करम के साथ तेरी सजा से पनाह मांगता हूँ। जो चीज़ तू अता करे इसे कोई रोकने वाला नहीं। सोचिए ज़रा कोई दिल की ख्वाहिश दिल में लाए, तसव्वुर में लाइए, कुछ लेना चाहते हैं और डर है कि कोई रोक ना ले, कोई रुकावट ना खड़ी हो जाए, कोई मसला ना हो, तो कहिए जो तू देना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता, जाओ सारे रोक लो, मेरा रब मुझे फिर भी दे देगा, तुम ये ले लो मुझे अल्लाह इससे अच्छी दे देगा। जब आपको ये लाड करने आ गए तो कह लीजिए कि फिर तौहीद पक्की हो गई, और जो चीज़ तू रोके इसे कोई अता करने वाला नहीं। अकीदे तौहीद बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा सुकून है, बहुत बड़ी स्लीपिंग पिल है, ट्रैंक्लाइजर है, बंदे का सारा गम हम खत्म हो जाता है। और किसी दौलतमंद को इसकी दौलत तेरे अजाब से नहीं बचा सकती। जी ये रिवायत नोट करिएगा, निसाई की रिवायत है 1347 और इबन हब्बान में 541 और इबन खुज़ैमा 745। अपना अकीदा बना लीजिए इसके मुताबिक। और ये दुआएं खजाने से कम नहीं है। फिर एक और दुआ लीजिए, रब्बी आइन्नी वला तुइन अलैया वंसुरनी वला तंसुर अलैया वमकुर ली वला तमकुर अलैया वाहदिनी वयस्सिर ली अलहुदा वंसुरनी अला मन बगा अलैया रब जालनी लक शक्कारन लक जक्कारन लक रहाबन मितवान लक मुखबितन इलैक अव्वाहम मुनीबन रब्बी तकब्बल तौबती वक्सिल हौबती वाजिब दावती वसब्बित हुज्जती वसद्दित लिसानी वहदी कल्बी वसलुल सखीमत सदरी। यकीन कीजिए हर नमाज के तक आप एक भी दफ़ा पढ़ लेना आपका दिल हल्का हो जाएगा। कैसे? तर्जमा देखिएगा। ए अल्लाह तू मेरी मदद कर और मेरे खिलाफ मदद ना कर, मुझे गालिब कर और किसी को मुझ पर गालिब ना कर। क्या लंबी लिस्टें नहीं आ जाएंगी दिमाग में जिनका खौफ रहता है? मुझे तदबीर बता और मेरे दुश्मनों को मेरे खिलाफ तदबीर ना बता। मुझे हिदायत दे और हिदायत मेरे लिए आसान कर और मेरे ऊपर जुल्म करने वालों के खिलाफ मेरी मदद कर। ऐ मेरे रब, मुझे अपना बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला, बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाला, अपने से खूब डरने वाला, अपना हुक्म मानने वाला, अपने सामने गिड़गिड़ाने वाला और अपनी तरफ आजजी से रजू करने वाला बना दे। ऐ मेरे रब, मेरी तौबा कबूल फरमा और मेरे गुनाह धो डाल, मेरी दुआ कबूल कर, मेरी दलील साबित रख, मेरी जुबान सीधी कर, मेरे दिल को हिदायत से नवाज और मेरे सीने से कीना निकाल दे। आमीन। तो कहिए, ये तिर्मिजी की रिवायत है 3551, सनद भी सही है, और इब्ने माजा में 3830 और अबू दाऊद में 1510, हाकिम में अल मुस्तदरिक 521 और इब्ने हब्बान में 2414। और आप देखिए कितनी प्यारी दुआ और कितने रेफरेंसेस हैं, और कभी पढ़ी नहीं हमने। बल्कि तिर्मिजी और इब्ने माजा में लक शक्कार लक जक्कार लक रहाबन है, और इब्ने माजा में लक मोतियन भी है, और अबू दाऊद में इलही का मुखबितन ओ मुनीबन। यानी पूरी दुआ बहुत ही प्यारी दुआ है। चलिए अब इस दुआ का जरा गौर से जायजा तो लेकर देखिए आपने क्या क्या मांग लिया। देखिए, शक्कार, जक्कार, आइन्नी, वला तो इन अलैश, यानी अरबी में नहीं समझ आती बातें, लेकिन जब आप उर्दू में पढ़ते हैं ना, अल्लाह मेरी मदद कर। हम में से कोई है जिसको मदद नहीं चाहिए? और किस वक्त नहीं चाहिए? हर वक्त तो चाहिए। गलबा चाहिए, तदबीरें चाहिए, प्लानिंग, हिकमत, हिदायत चाहिए, जो हम पे कोई जुल्म करे उसके खिलाफ मदद चाहिए, तो फिर अल्लाह का शुक्र गुजार बनना। तो शक्कार लक जक्कारन, खूब डरने वाला, हुक्म मानने वाला, यकीन करें ये दुआ टॉप लिस्ट पे रखें, इसको याद करें। याद होगी ना तो पढ़नी भी आसान होगी, मैं भी याद करूंगी, काफी हद तक आती भी है, पढ़ती भी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ इसको दोबारा दोहराऊंगी। और दुआ कबूल करनी भी है, और ये भी कहना है कि अल्लाह जुबान से सीधी बात निकाल, टेढ़ी टेढ़ी बातें अच्छी नहीं होती। अब आप देखिए हमने कितनी प्यारी दुआएं मांगी है ना। अब शुरू से शुरू करके आप अपनी टीचर के साथ मांगिए और दोहराइए, ताकि आपको ये याद भी हो जाए और आप इनसे फायदा भी उठाएं। इसको अच्छे तरीके से मांगेंगे।
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي التي جعلته فيها معاشي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا مطواعا لك مخبتا مطواعا لك مخبتا مخبتا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. الحمد لله.